الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ضروری اناؤنسمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہمارا یہ پروگرام 15 منٹ پہلے ہوا کرے گا, تو آپ 15 منٹس پہلے آیا کیجیے, ٹھیک ہے؟ کل سے انشاءاللہ. آج وہ دن ہے جو دنوں میں سب سے افضل دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے سب دنوں میں. اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی روز ان کی روح قبض کی گئی, اسی روز سور پھونکا جائے گا, یعنی قیامت بھی اسی دن آنی ہے, اور اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا. لہذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے, بڑا افضل دن ہے باقی دنوں کی نسبت. اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کی اہمیت کوئی صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلتیں تو کتنی پرانی ہیں, یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی فضیلت ہو گئی نا, تو قیامت کے دن تک اس کی فضیلت رہے گی, کیونکہ قیامت کا دن آئے گا ہی جمعے کو. تو اس لیے جمعے کا دن اہم دن ہے, اور اس دن میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے ہمیں, کیونکہ ہم جو درود بھیجیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا جائے گا. لہٰذا آج کے دن اپنا یہ بنا لیں کہ باقی ساری ذکر چھوڑ کے آپ درود کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے. باقی جو آپ ایوری ڈے پڑھتے ہیں وہ تو ضرور پڑھیں, لیکن سب سے زیادہ درود کی کثرت کیجیے, تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے, اور کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف ہے, مصیبت ہے, رنج ہے, غم ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس میں درود پڑھنا جو ہے, اس آپ جو الگ الگ دعائیں کریں گے اس سے زیادہ یہ بات ہے کہ درود پڑھ لیں گے تو سارے غم اور پریشانیاں, اس کے لیے یہ درود ہی کافی ہو جائے گا, اور بخشش بھی ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. تو دیکھیں اب سبحان اللہ, ایک پہلا عشرہ کتنی تیزی سے گزر بھی گیا, اور اسی طرح یہ عشرہ گزر جائے گا, پھر تاک رہتے ہیں اور رمضان ختم. تو ایسے میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کون کون سے کام ہیں جن میں ابھی پیچھے رہ رہے ہیں, ابھی تک ہماری سپیڈ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, کہاں پہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا. تو ہم سپیڈ پکڑیں گے, تھوڑی سی تیزی دکھائیں گے, کیونکہ پتہ نہیں ہے یہ پیارے دن پھر ہمیں کبھی ملے کہ نہیں ملے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ان دنوں کو بھی قیمتی سمجھیں, اور ان میں جمعے تو ویسے ہی بہت ہی کم ہوتے, تو جمعہ مل جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے. آج کے دن کی وہ گھڑی نہ بھولیے گا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہ عصر سے مغرب کے درمیان کہیں ہیں, اس لیے اس کو دعاؤں میں سمجھ لیں, دعاؤں کے لیے وقف کر دیں وہ وقت. صرف درود پڑھیے اور دعائیں کیجیے, اور دعائیں تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے کہیں تو چلتے پھرتے ہی دعائیں کیجیے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کو وہ گھڑی مل جائے اور اس کی دعا کو قبولیت حاصل ہو جائے. اسی طرح آج آپ جب مسجد جائیں, چاہے جمعے کے لیے جاتے ہیں, بعض لوگ تراویح کے لیے جا رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے درود پڑھنا ہے. مثلا یعنی کیا مراد ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور جب مسجد سے نکلیں تو آپ یہ کلمات کہیں گے, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں اگر آپ نے لکھنی ہے تو. بسم اللہ آپ سب کو آتی ہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنا ہے, والسلام علی رسول اللہ. ये मसनून अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो इस तरह कहते थे, अल्लाह के नाम से अल्लाह के रसूल पे सलाम हो, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़ुनूबी, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर आगे तो आप लोगों को सबको आती होगी, वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। और निकलते वक्त सिर्फ दुआ के अल्फाज में ये फ़र्क है कि एंड में आपने कहना है वफ्तह ली अबवाब फ़दलिक, ठीक है। बिस्मिल्लाह ही वैसे ही कहेंगे, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ही कहेंगे। आप इसको चार पार्ट्स में याद कर लेना। बिस्मिल्लाह, आपको पता है कि हर चीज़ अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर उसके बाद वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, फिर अल्लाहुम्मग़फिरली ज़ुनूबी तीसरा पार्ट हो गया, फिर वफ्तह ली अबवाब फ़दलिक, जब आपने निकलना है तो फ़दलिक कहना, जब एंटर होना है तो रहमतिक कहना, ठीक है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए हमसे। आजकल हम जो बात कर रहे हैं दिलों को सलामत बनाने की, तो बाज़ लोगों ने मुझे ईमेल लिखी है कि वो सख्त मायूसी में जा रहे हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि वो ये नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि जब भी वो कोशिश करते हैं तो फिर वो गलती हो जाती है, फिर वापस पॉइंट ज़ीरो पे चले जाते हैं। अब वो परेशान है कि करें तो करें क्या, डिप्रेशन हो रहा है, मायूसी हो रही है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि तज़किया क्या है, ये ऐसे ही है जैसे आप बर्तन धोती हैं, उसको मांजती हैं, फिर क्या होता है, एक दफ़ा ही ज़िंदगी में धोते हैं बर्तन, या बार बार धोते हैं, बार बार धोते हैं ना। तो दिल को भी हम ये सोच सकते हैं कि एक बार धो के बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिर दोबारा उस पर गर्द पड़ जाएगी, दोबारा गंदगी आ जाएगी। हम ये लोगों के दरमियान रहते हैं, एक हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, हालात होते हैं जो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो दिल एक जैसा तो नहीं रह सकता ना। ये तो है ही, इसका नाम है कल्ब, तो कल्ब कहते ही उस चीज़ को है जो उलटता पुलटता रहता है। तो जहाँ हम अपने जाहिर को साफ सुथरा रखने के लिए गुसल करते हैं, शावर लेते हैं, तो दिल को साफ करने के लिए भी ये बार बार चीज करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हम जरूर गिरेंगे, हम सब गिरेंगे, मगर फिर उठना है, गलतियां होंगी, फिर उनकी तसहीह करनी है। मगर सोचें, जो इंसान ऐसा हो कि वो हर रोज गुसल करता है, तो क्या वो कभी गंदा नहीं होता? होता है, शाम तक फिर पसीना आ जाता है, फिर गर्द पड़ जाती है, मगर इतना गंदा कभी नहीं होगा जितना वो इंसान जो कभी नहाता ही नहीं, ठीक है। तो हमने जब अपने दिल को साफ करना है, हर दफा हर रोज अपना तस्किया करते रहना है, अपने अंदर से गंदगियां निकालते रहना है, तो फिर गर्द पड़ेगी, गंदगी आएगी, मगर वो बार बार साफ होता रहेगा। तो इसको अपनी हैबिट बनाना है कि हमने साथ साथ सफाई करनी है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रमजान में बस ये करें और उसके बाद बस हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आपका कल्ब सलीम हो गया। ये बड़ी मेहनत का काम है, ये अल्लाह ताला तक जब तक पहुंचना है उस वक्त तक इसको सलीम रखना है। यानी कि रमजान के बाद भूल ही गए, लेकिन कभी कोई हमें कुछ कह देगा, कभी हमें किसी की बात बुरी लग जाएगी, कभी हमारे साथ कोई बुरा कर देगा, तो एक दिल ने तो मैला होना है ना। कभी हमने जो सोचा होगा वो वैसा नहीं होगा, कभी बदगुमानियां आने लगेंगी। तो इस तरह से इस दिल की बार बार धुलाई होती रहना चाहिए। दूसरी एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ इस बात में नहीं, तमाम कामों में, कि कभी हमने मायूस नहीं होना। मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरा कोई बनने वाला नहीं, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैंने मेरा क्या बनेगा, मैं तो बिल्कुल पास होना ही नहीं है, मैं नहीं ठीक हो सकती। ये सारी क्या कलिमात हैं, ये मायूसी की। क्या आप जानते हैं कि कौन मायूस हुआ था सबसे पहले? इबलीस। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए थे, उन्होंने तो दुआ की थी अल्लाह से। अगर वो मायूस होकर बैठ जाते, अब अल्लाह ने मुझे कहाँ माफ करना है, मुझे तो सजदा कराया फरिश्तों से, मुझे जन्नत में रखा, मुझे बताया भी, डायरेक्ट मुझे हुक्म दिया कि इस फल को नहीं खाना, फिर भी मैंने ये कर लिया। अब मेरी कहाँ से माफी होनी है? एक मुझे बात कही गई, एक चीज से मना किया गया, मैं उसमें भी फेल हो गया, मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ये नहीं उन्होंने कहा। तो हमने भी मायूस नहीं होना। देखिए ये जो इबलीस है ना, इबलीस बाला सीन से, इसका मतलब ही मायूस है। और वो क्या चाहता है इबलीस, इंसान को भी वैसा ही बनाना चाहता है जैसे वो होता है, यानी वो खुद मायूस है ना, और वो चाहता है कि हम भी मायूस हो जाएं, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी सही नहीं हूं, मेरी कभी नहीं माफी हो सकती, मैं कितनी निकम्मी हूं, यूजलेस हूं, वर्थलेस हूं। ये जो थॉट्स हैं, याद रखें, ये शैतान की तरफ से होते हैं। इंसान जब ये सोच लेता है ना, तो फिर वो दोबारा खड़ा होने के काबिल नहीं रहता, वो कोशिश और मेहनत तर्क कर देता है कि क्या फायदा, जब कभी सही नहीं होना, क्या फायदा दिल को साफ करने का, फिर वैसा ही हो जाना, मेरे से तो फिर गलतियां हो जानी, मैंने तो इतनी दफा तौबा कर चुकी, अब मेरा कहाँ कुछ बनेगा। तो इंसान फिर डिप्रेस होता है, गमगीन होता है, तो उसमें जील नहीं रहती, वो जज्बा, वो जोश नहीं रहता नेकी को करने का, वो मुर्दा दिल हो जाता है। तो यही तो शैतान देखना चाहता है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, कुर्बान जाए ऐसे रब पे, वो क्या देखना चाहता है? वो कहता है कि इंसान कमजोर है, जयीफ है, वो जानता है कि इंसान जज्बाती भी है, उसको पता है कि ये जल्दबाज भी है, ये बातों में भी जल्दी आ जाता है, वो जानता है इसके पीछे शैतान भी लगा हुआ है, वो अच्छी तरह जानता है हम क्या चीज हैं। वो ना जानेगा तो और कौन जानेगा जिसने हमें पैदा किया, वो जानता है हम में क्या कमियां हैं, वो जानता है कि हम कितनी दफा कोशिश करते हैं सुधरने की पर फिर गिर जाते हैं, वो जानता है हम कितना तड़पते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, मगर फिर हमारे जज्बात हावी हो जाते हैं, कहीं ऐसा माहौल मिल जाता है, कहीं ऐसी सुहबत मिल जाती है कि हम फिसल जाते हैं। वो जानता है कि हम में कमियां होने के बावजूद हमारी कितनी आरजू है कि हम उसको राजी कर लें, वो जानता है कि हम क्यों भूखे प्यासे रह रहे हैं सारा सारा दिन, कि वो हमारी तरफ अपनी नजर रहमत कर ले, वो जानता है कि हम गुनाहों से भरे हुए हैं, मगर हम फिर भी उसकी बख्शिश की उम्मीद में जी रहे हैं, वो जानता है कि हम बेसहारा हैं, कमजोर हैं, हमारे पास कोई और सहारा नहीं, और हम उसको अपना सहारा बनाना चाहते हैं। वो जानता है हम जानबूझ के नहीं करते, हमसे बस हो जाता है, मगर हर बार हम उसके आगे मुसल्ले पे गिर के आंसू बहाते रहते हैं कि हम और कहाँ जाएं, उसके सिवा कोई है ही नहीं जो हम जैसों को कबूल कर ले, जो बख्श सके, कोई है ही नहीं जो जाए पना हो, कौन हमें पना देगा, कौन है जो हमारे जैसों के इतने गुनाहों को भी ये कह के दरगुजर कर देगा कि कोई नहीं, सिर्फ वो ही तो है, उसको पता है हम नेक बनना चाहते हैं, इसीलिए हम ये बातें सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बस उसको हर दफा उसको ही सुनाया करें अपना ये दुखड़ा कि मैं कोशिश कर रही हूं, नहीं हो रहा, मैं गिर जाती हूं, तू मुझे थाम ले अल्लाह। पता है आपको, गुनाहगारों का रोना धोना, उनकी आओ बका, उनका गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला को बाज दफा तस्बीह करने वालों की सुबहान अल्लाह से भी ज्यादा महबूब है, अल्लाह ताला को उनका पछतावा इतना पसंद आता है कि कितना पछता रहा है, इसको कितना रिग्रेट है। वो गनी है, याद रखें, आपका वास्ता ऐसे रब के साथ है जिसकी रहमतों की वुसत इतनी है कि आसमान और जमीन भी मिलके उसकी रहमत का अहाता नहीं कर सकते। उसकी शान गफारी ऐसी है कि सारी मखलूक को बख्श दे तो भी उसको परवाह नहीं है। वो अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करता है। वो तो वो रब है जो चाहे तो इंसानों के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। और क्या चाहिए हमें, हमारा तो वास्ता है ऐसे रब के साथ। तो जब रिग्रेट हो तो डिप्रेशन में नहीं जाना बल्कि उसकी रहमत की तरफ देखना। वो यही तो देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा कितना डेस्परेट है, कितनी कोशिश कर रहा है। एज लॉन्ग एज आप कोशिश में लगे हुए हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो माफ कर देगा। और गिरेंगे तो कोई बात नहीं, फिर उठें, फिर उसके बाद गिर जाएंगे तो कोई नहीं, फिर उठें। गिरते शाह सवारी मैदान जंग में, आप कोशिश कर रहे हैं तो गिर रहे हैं ना। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, जिस दिन आपने छोड़ दिया, हम तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, तो क्या होगा फिर? फिर तो ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे कि फिर वहां से निकल नहीं सकते, ये तो डाउन ही डाउन है। तो नहीं, ये नहीं सोचना। हाँ, गलतियां हो जाएंगी, जो जो बताया गया वो फिर भूल जाएगा, फिर इंसान से कोताही होगी, फिर इंसान सोचेगा हाय फिर ये हो गया, फिर अल्लाह से माफी मांगे, फिर हो जाएगा कभी। जानबूझ के नहीं करना, मगर गलतियां होती हैं, इंसानों से ही होती हैं ना। तो कभी मायूस ना, अंधेरा जितना भी गहरा हो, ऐसे रब से भी भला कोई मायूस हो सकता है? ये तो इबलीस की बदबख्ती थी कि उसने तौबा नहीं की, वरना वो भी तौबा करता तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता। तो जो हमारा वास्ता जिस रब से है ना, उसकी रहमतों की तरफ देखा कीजिए। जब मगफिरत मांगने लगे तो अपने गुनाहों को देखें और लेकिन साथ उसकी रहमत को देखें। क्योंकि हम सोचते कैसे हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमारा वास्ता इंसानों से होता है ना, इंसानों के साथ आप एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा करते हैं तो इतना धुतकार देते हैं, उसके बाद कहते हैं दफा हो जाओ, अब मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, अब खत्म हमारा वास्ता नाता खत्म। तो हम इसी तरह अल्लाह ताला को भी अज्यूम कर लेते हैं कि हम जितना इतना कर लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, बस हम खत्म है, बस अब नहीं कुछ होना। क्यों? तो कहते हैं आसमान भर के भी इतने तुम्हारे गुनाह हो जाए, कि जमीन भर जाए, आसमान तक चले जाए तुम्हारे गुनाह, फिर भी तुम एक दफा कह दोगे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अब तुमने मेरे साथ शिर्क ना किया होगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कि अगर उसकी माफी ना हो तो, या वो कह दे कि जो ये करेगा या जो बार बार आएगा मेरे पास, मैंने नहीं उसको माफ करना, तो फिर अलग बात है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कहा गया, हमें एनकरेज किया गया कि तुम आओ, अल्लाह का दर खुला हुआ तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा लिखा हुआ कि अल्लाह का दर बंद हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो गुनाह करते हैं, उनका अल्लाह का दर बंद हो जाता है? नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं। तो कयामत के दिन भी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह की रहमत इतनी होगी, अल्लाह ताला जहन्नुम से लोगों को निकालेगा, शैतान को भी उम्मीद हो जाएगी कि शायद आज मुझे भी जहन्नुम से आजादी मिल जाएगी। इसलिए हमने मायूस होके बैठना नहीं है, हमने इस रमजान में अपनी बख्शिश करवानी है। और बख्शिश की सूरत यही है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारा रब वो गनी है, वो बेनियाज है। वो इस तरह से जैसे इंसान ग्रजेस रख लेते हैं ना, कि दिल में बस रख लिया, उसके बाद ऊपर ऊपर से कह भी दिया कि अच्छा माफ कर दिया, उसके बाद माफ भी ना किया, फिर ताने देते रहे, फिर बार बार वही बातें, फिर थोड़े दिन बाद उनको भूल ही जाता है कि हमने इसको माफ कर दिया, फिर वो वही गुस्से लेके बैठ जाते। इस तरह अल्लाह ताला के साथ मामला नहीं है, वो बेनियाज है, सारी मखलूक को बख्श दे भी दे उसको, उसको परवाह नहीं, उसको परवाह नहीं, सारों को भी जन्नत में डाल देना, उसकी जन्नत छोटी नहीं हो जाए। तो कहीं हमारे जैसों के लिए भी कोई जगह हो सकती है उस। तो
उम्मीद को नहीं छोड़ना।
बताती हूँ, यानी दुरूद शरीफ मुख्तसर वाला बताती हूँ, ये इतना छोटा सा है, अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़े बहुत अच्छा है, लेकिन आपको और भी दुरूद आने चाहिए, मसनून दुरूद, ताकि कभी होता है कि इंसान को मुख्तसर पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, वो भी दुरूद है, वो भी हदीस से साबित है। और वो दुरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, बस इतना सा। सुनन नसाई में है ये दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। अब जिनको दुरूद इब्राहिमी आता है उनको ये दुरूद भी आसान है, उनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पे दुरूद भेजा करो और दुआ में इसे लाजिम कर लो, ये ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ये मतलब है इसका। अल्लाह अकबर, आज की जो दुआ है वो भी बहुत ही जामे दुआ है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ। वमा कौरबा इलेहा, और हर उस चीज का जो उससे करीब कर दे, मिन कौले और अमले, वो बात हो या अमल हो, अल्लाह हर बात, यदि आप एक तरह से बड़ी जामे ये दुआ है, क्योंकि आप अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं हर ऐसी नेकी की जो आपको जन्नत से करीब कर दे, चाहे वो बातों की सूरत में हो चाहे वो अमल की सूरत में हो। तो आपने एक एक बात नहीं की, आपने सारी बातों को एक दुआ के अंदर कह दिया कि अल्लाह वो सारे ही काम मेरे से ले लेना, वो सारी बातें मेरे से कराना जो मुझे जन्नत के करीब लेके जाए, और वह आऊज़ु बिका मिनन नार, और ऐ अल्लाह मुझे आग से अपनी पनाह में ले ले। वमा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमलिन, और अल्लाह ऐसी हर बुराई से, चाहे वो बातों में हो चाहे वो अमल में हो, जो जहन्नुम के करीब कर देना, उस सारी बुराइयों से मुझे अपनी पनाह में ले ले। यानी आग से निजात भी मांग रहे हैं और वो सारे गुनाहों से भी आप अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं जिनकी वजह से इंसान जहन्नुम में चला जाता है। वह असअलुका, और अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ, अंत जाला कुल्लका खैरा, के अल्लाह हर फैसला जो तकदीर का है उसको मेरे हक में बेहतर बना दे। यानी आपने अच्छी, जिसको कहें तकदीर, अच्छी किस्मत भी मांगी, वो बहुत ही जामे दुआ है। अब आपको ये नहीं कहने की जरूरत, अल्लाह ताला मुझे फलां बुरी बात से बचा लेना, मुझे झूठ से बचाना, गीबत से बचाना, बोहतान से बचाना, अल्लाह मुझे वो नेक बना देना, अल्लाह मुझसे सदका करा लेना, अल्लाह ताला मुझसे ये नेकी के काम करा लेना, नमाज में मुझे अच्छा कर देना, ये सारे वो काम है जो जन्नत से करीब करने वाले हैं। तो आपने सारे ही तो मांग लिए, सारे अमल मांग लिए, सारी बातें मांग ली, और फिर इसी तरह जो आग से अल्लाह की पनाह में आना है और ऐसे हर अमल से, तो उस सारी गंदगियां बुराइयां उनसे आप अल्लाह की पनाह में आ गए। तो कितनी प्यारी दुआ है, और अपनी अच्छी किस्मत भी मांग ली, अपने लिए हर अच्छा फैसला मांग ली। तो इंशाल्लाह इस दुआ को आज हमने सीखना है और इसको मांगना है। इसी तरह आज जुमे का दिन जो है वो समझ लें सदके का दिन है, ठीक है? तो सदका जरूर कीजिए, खास तौर पे जुमे के वक्त जरूर सदका कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। नेकी करने के बाद दुआएं कबूल होती हैं, तो आप जो भी नेकी करें, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, उसके बाद दुआएं कीजिए, सदका कर रहे हैं फिर दुआएं कीजिए, ठीक है? ताकि अल्लाह ताला की जो रहमत मुतवज्जी हुई भी है वो अल्लाह ताला हमारी दुआ को भी कबूल कर ले। अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और जब आप दुआ करने लगी अपने लिए, तो एक दरख्वास्त ये भी है, ये भी दुआ कर दिया कीजिए कि अल्लाह जो हमें ये सारी नेकी की बातें बताती है, अल्लाह ताला तू उसको भी बख्श देना और उससे राजी हो जा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।